एलाइजा नंबर चार
दास्ता।
एलिया की गवाही तब शुरू होती है जब वो ये घोषित करता है कि 3.5 वर्षों तक उसके वचन के सिवा वर्षा नहीं होगी।
और तिशबी एलिया, जो गिलाद के निवासियों में से था, ने आहाब से कहा, इज़राइल का यहोवा परमेश्वर जीवित है जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन वर्षों में न ओस पड़ेगी और न वर्षा होगी, परंतु मेरे वचन के अनुसार। 1 राजा 17:1।
वे 3.5 वर्षीय 533 से 3.5 वर्षीय 58 तक साशोथीरा के इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3.5 वर्षीय 58 वर्ष सूखे की अवधि के अंत में एलिया अहाब को कर्मेल बुलाता है। पहले स्वर्गदूतों के संदेश ने 22 अक्टूबर 1844 को परमेश्वर के न्याय की घड़ी की घोषणा की। पहले स्वर्गदूत का संदेश अहाब को समस्त इसराइल को कर्मेल बुलाने की आज्ञा था।
और ऐसा हुआ कि जब अहाब ने एलिया को देखा तो अहाब ने उससे कहा, क्या तू ही है जो इसराइल को क्लेश में डालता है? तब उसने उत्तर दिया, मैंने इसराइल को क्लेश में नहीं डाला, परंतु तू और तेरे पिता का घराना, क्योंकि तुमने यहोवा की आज्ञाओं को त्याग दिया है और तू बालों के पीछे हो लिया है। अब इसलिए लोगों को भेजकर समस्त इसराइल को कर्मेल पर्वत पर मेरे पास इकट्ठा कर और बाल के 450 भविष्यद्वक्ताओं को और उपवनों के 400 भविष्यद्वक्ताओं को भी, जो इजबेल की मेज पर खाते हैं। तब अहाब ने समस्त इसराइलियों के पास दूत भेजे और उन भविष्यद्वक्ताओं को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कराया। तब एलिया सब लोगों के पास आकर बोला, तुम कब तक दो विचारों के बीच डगमगाते रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसका अनुसरण करो, और यदि बाल तो उसका अनुसरण करो। परंतु लोगों ने उसे एक भी बात का उत्तर न दिया। 1 राजा 18:18-21।
एलिया के समय में समस्त इसराइल कर्मेल पर एकत्र किया गया, और ये घटना आगे चलकर विलियम मिलर के समय के इतिहास का प्रतीक थी, जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 की 3 कलीसियाएं एकत्र की गईं। वो कलीसिया जो 538 में इजेबेल के उत्पीड़न से बचने के लिए प्रारंभ में मरुभूमि में भाग गई थी, जिसका प्रतिनिधित्व थुआतीरा की कलीसिया करती है, मरुभूमि नुबाहर आई उस पीढ़ी के रूप में, जिसे एलिया एके संदेश, जिसका प्रतिनिधित्व विलियम मिलर करते हैं, से सामना होना था। तब पृथ्वी के पशु ने अपना मुख खोला और उसके विरुद्ध 1260 वर्षों तक भेजी गई उत्पीड़न की बाढ़ को निगल लिया।
और पृथ्वी ने स्त्री की सहायता की, और पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और उस बाढ़ को निगल लिया जो अजगर ने अपने मुंह से उगल दी थी। प्रकाशित वाक्य 12:16।
भविष्यवाणी की भाषा में किसी राष्ट्र का बोलना उसके विधायी और न्यायिक प्राधिकरणों की कार्रवाई मानी जाती है। और 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान नामक दिव्य दस्तावेज को स्थापित किया, जिससे अधिकारों और स्वतंत्रता की वो रक्षा सुनिश्चित हुई जो यूरोप के राजाओं और धर्मत्यागी कैथोलिक चर्च दोनों के उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक थी।
राष्ट्र की वाणी उसके विधायी और न्यायिक प्राधिकरणों की कार्रवाई है। महान विवाद 1548।
सन 1785 में बाइबल की भविष्यवाणी में 6ठे राज्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की भविष्य सूचक भूमिका के आरंभ होने से ठीक पहले वो मेमने की तरह बोला, परंतु रविवार के कानून के समय वो अजगर की तरह बोलेगा।
और मैंने पृथ्वी में से ऊपर आते हुए एक और पशु को देखा, उसके दो सीन थे, मेमने के समान और वो अजगर के समान बोलता था। प्रकाशित वाक्य 13:11।
पृथ्वी के पशु का आरंभ और अंत उसके बोलने से चिन्हित होते हैं। 1798 में अहाब समस्त इसराइल को कर्मेल पर्वत पर बुलाता है, जहां एलिया एक परीक्षण रखने वाला है, ताकि देखने वालों को यह सिद्ध हो सके कि इब्रानियों का परमेश्वर सच्चा है या इजबेल का देवता। इजबेल के पास बाल के 450 भविष्यद्वक्ता और उपवन के 400 भविष्यद्वक्ता थे। झूठा देवता बाल एक पुरुष देवता था और झूठी देवी अश्तारो एक स्त्री देवी थी। झूठे भविष्यद्वक्ताओं की वे दो श्रेणियां कलीसिया और राज्य के संयोजन का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि भविष्यवाणी में जब किसी पुरुष और स्त्री को साथ दर्शाया जाता है तो स्त्री कलीसिया का और पुरुष राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। एलिया ने कलीसिया और राज्य के उस अपवित्र संयोजन का सामना करते हुए 1 के मुकाबले 850 का सामना किया, जिसे स्त्री और पुरुष झूठे देवताओं द्वारा तथा अहाब और ईजेबेल के विवाह द्वारा दर्शाया गया था। अहाब और ईजेबेल में कलीसिया और राज्य का चित्रण गणतंत्रवाद के सींग के भ्रष्टाचार का प्रतिनिधित्व करता है और बाल तथा अष्टारूथ प्रोटेस्टेंट सींग के भ्रष्टाचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुद्दा ये था कि प्रकाश रात के दूसरे अध्याय में थुआतीरा द्वारा दर्शाए गए भ्रष्ट धर्म के विरुद्ध इलिया का विरोध। इलिया एक प्रोटेस्टेंट का प्रतिनिधित्व करता था, क्योंकि प्रोटेस्टेंट की एकमात्र परिभाषा ये है कि कोई व्यक्ति रोम के विरुद्ध विरोध करता है। इलिया ये फिरेक का विरोध कलीसिया और राज्य के उस संयोजन के विरुद्ध का प्रतिनिधित्व करता है जो एक भ्रष्ट राज्य और एक भ्रष्ट कलीसिया के बीच की अपवित्र संधि से स्थापित होता है।
तो अभी मेरे पास तेरे विरुद्ध कुछ बातें हैं, क्योंकि तू उस स्त्री ईजेबेल को, जो अपने आप को भविष्य वक्त्री कहती है, मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों को चढ़ाए हुए भोजन खाने की शिक्षा देने और उन्हें बहकाने देता है, और मैंने उसे अपने व्यभिचार से मन फिराने का समय दिया, परंतु उसने मन न फिराया। देखो, मैं उसे शैया पर डाल दूंगा, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे अपने कामों से मन न फिराएं, उन्हें भारी क्लेश में डालूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:20-22।
भोजन उस संदेश का प्रतिनिधित्व करता है जिसे आप स्वीकार करते हैं, और जो संदेश मूर्तियों के लिए बलि किया जाता है वो कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है, जो मूर्ति पूजा की घृणित आराधना का साक्षात प्रतीक है। अंधकार युग में परमेश्वर के लोगों ने कैथोलिक धर्म में प्रचलित पर अनेक मूर्ति पूजक सिद्धांतों को, विशेषकर सूर्य पूजा को, स्वीकार कर लिया था। व्यभिचार एक अवैध संबंध है और भविष्य सूचक रूप से उस मूल सार का प्रतिनिधित्व करता है जिसे संविधान निषिद्ध करता है। चर्च और राज्य का मेल। अहाब का ईजेबेल के साथ अवैध संबंध था, क्योंकि इज़राइल के राजा के रूप में उसे किसी मूर्ति पूजक राजकुमारी से विवाह नहीं करना था। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एलिया बताया, और यूहन्ना ने भी उसी अपवित्र संबंध का सामना किया जब उसने हेरोदेस को अपने भाई की पत्नी हेरोदियास से विवाह करने के लिए फटकारा।
क्योंकि हेरोद ने यूहन्ना को पकड़ लिया, उसे बांधा, और हेरोदियास के कारण, जो उसके भाई फिलिप की पत्नी थी, उसे जेल में डाल दिया। क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे अपने पास रखना तेरे लिए वैध नहीं है। मत्ती 14:3-4।
एलिया का अहाब और ईजेबेल से आमना सामना, यूहन्ना का हेरोदिस और हेरोदिया से आमना सामना का पूर्वाभास था, क्योंकि दोनों ही संबंध कलीसिया और राज्य के अवैध गठजोड़ का प्रतिनिधित्व करते थे। मिलकर वे 144,000 के एलिया संदेश के प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पोप तंत्र, ईजेबेल और हेरोदिया, संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 राजाओं अहाब और हेरोदिस और झूठे भविष्यद्वक्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका का सामना करता है। कर्मेल के झूठे भविष्यद्वक्ता और हेरोदिया की बेटी सलोमी। कर्मेल के भविष्य सूचक प्रसंग में एलिया द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की रक्षा शामिल है, जो चर्च और राज्य के पृथककरण के सिद्धांत को स्थापित करता है।
और ऐसा हुआ कि जब अहाब ने एलिया को देखा, तो अहाब ने उससे कहा, क्या तू वही है जो इज़राइल को क्लेश देता है? और उसने उत्तर दिया, मैंने इज़राइल को क्लेश नहीं दिया, परंतु तू और तेरे पिता का घराना, क्योंकि तुमने यहोवा की आज्ञाओं को त्याग दिया है और तूने बालों का अनुसरण किया है। 1 राजा 18:17-18।
संविधान ने स्थापित किया कि गणतंत्रवाद और प्रोटेस्टेंटवाद के दो सींग हमेशा एक दूसरे से अलग रहेंगे, लेकिन प्रकाशित वाक्य बताता है कि जब संयुक्त राज्य अंततः अजगर की तरह बोलेगा, तो ऐसा तब होगा जब संयुक्त राज्य की धर्मत्यागी कलीसियाएं नियंत्रण अपने हाथ में लेकर धर्मत्यागी सरकार के साथ मिल जाएंगी।
परंतु पशु की प्रतिमा क्या है और ये कैसे बननी है? ये प्रतिमा 2 सींगों वाले पशु द्वारा बनाई जाती है, और ये उसी पशु के समान एक प्रतिमा है। इसे पशु की प्रतिमा भी कहा जाता है। तब ये जानने के लिए कि ये प्रतिमा कैसी है और इसे कैसे बनाई जानी है, हमें स्वयं उस पशु अर्थात पोप की सत्ता की विशेषताओं का अध्ययन करना होगा। जब प्रारंभिक कलीसिया सुसमाचार की सरलता से हटकर अन्य जातीय विधि विधानों और रीति रिवाजों को स्वीकार करने लगी और भ्रष्ट हो गई, तो उसने परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ्य खो दिए और लोगों के अंतकरणों पर नियंत्रण करने के लिए उसने लौकिक सत्ता का सहारा लिया। परिणाम स्वरूप पोपतंत्र उत्पन्न हुआ, एक ऐसी कलीसिया जिसने राज्य की शक्ति पर नियंत्रण कर लिया और उसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, विशेषकर विधर्म के दंड के लिए प्रयोग किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए पशु की प्रतिमा बनाने हेतु धार्मिक शक्ति को नागरिक सरकार पर ऐसा नियंत्रण करना होगा कि राज्य के अधिकार का भी कलीसिया द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाए। महान विवाद 304-47।
कर्मेल पर्वत पर एलिया ने मिलराइट्स के कार्य का प्रतीक किया और मिलराइट्स उन लोगों के विपरीत सच्चे भविष्यद्वक्ता के रूप में स्थापित हुए जो हाल ही में कैथोलिकवाद के प्रभाव से बाहर तो आए थे परंतु प्रथम स्वर्गदूत के प्रकाश को अस्वीकार करके रोम लौटना चुन लिया। इस प्रकार 1844 के वसंत में दूसरे स्वर्गदूत के संदेश का आशय ये था कि प्रोटेस्टेंट संप्रदायों को बाबुल की बेटियां और मिलराइट्स को वास्तविक प्रोटेस्टेंट सींग ठहराया जाए। जब परमेश्वर ने प्राचीन इसराइल को मिस्र की दास्ता से निकालकर और लाल समुद्र के जल के बीच से पार कराया, तब उन्होंने एक क्रमिक परीक्षण प्रक्रिया आरंभ की जो स्वर्गीय मन्ना की परीक्षा से शुरू हुई।
हम पर बीते युगों का संचित प्रकाश चमक रहा है। इसराइल की विस्मृति का अभिलेख हमारे प्रबोधन के लिए सुरक्षित रखा गया है। इस युग में परमेश्वर ने हर राष्ट्र, कुल और भाषा से अपने लिए एक प्रजा एकत्र करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। एडवेंट आंदोलन में उसने अपनी विरासत के लिए वैसे ही कार्य किया है जैसे उसने इसराइलियों को मिस्र से निकालते समय उनके लिए किया था। 1845 की महान निराशा में उसकी प्रजा का विश्वास वैसे ही परखा गया जैसे लाल सागर पर इब्रानियों का परखा गया था। टेस्टिमोनीज खंड 8 पृष्ठ 115-116।
22 अक्टूबर 1844 की निराशा स्वर्गीय पवित्र स्थान की समझ की ओर ले गई और उस समझ ने तब सप्ति की परीक्षा सामने लाई, ठीक वैसे ही जैसे मन्ना की परीक्षा प्राचीन इसराइल के लिए 10 परीक्षाओं की श्रृंखला की पहली बन गई थी।
सन 18 से DK 7 में जब भाई बंधु सप्त के दिन टॉपशम मेन में पायन एकत्र थे, तब प्रभु ने मुझे निम्नलिखित रशन दिया। हमें प्रार्थना की एक असाधारण भावना का अनुभव हुआ और जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा हम पर उतरा। हम बहुत आनंदित हुए। कुछ ही देर में मैं दुनियावी चीज़ों से बेखबर हो गया और परमेश्वर की महिमा के दर्शन में लीन हो गया। मैंने एक स्वर्गदूत को तेजी से मेरी ओर उड़ते हुए आते देखा। उसने मुझे शीघ्र ही पृथ्वी से उठाकर पवित्र नगर में पहुँचा दिया। नगर में मैंने एक मंदिर देखा जिसमें मैं प्रवेश कर गया। पहले पर्दे तक आने से पहले मैं एक द्वार से होकर गुजरा। वो पर्दा उठा दिया गया और मैं पवित्र स्थान में प्रवेश कर गया। यहाँ मैंने धूप की वेदी, 7 दीपकों वाला दीवट और वो मेज देखी जिस पर उपस्थिति की रोटियां रखी थीं। पवित्र स्थान की महिमा देखने के बाद यीशु ने दूसरा पर्दा उठाया और मैं महापवित्र स्थान में प्रवेश कर गया। पवित्रतम स्थान में मैंने एक संदूक देखा। उसके ऊपर और किनारों पर शुद्धतम सोना था। संदूक के प्रत्येक छोर पर एक सुंदर करूब था जिसके पंख उस पर फैले हुए थे। उनके मुख एक दूसरे की ओर थे और वे नीचे की ओर देख रहे थे। स्वर्गदूतों के बीच एक सोने की धूपदानी थी। संदूक के ऊपर जहां स्वर्गदूत खड़े थे अत्यंत उज्ज्वल महिमा थी जो ऐसे प्रतीत होती थी मानो वहां परमेश्वर का सिंहासन हो जहां वो निवास करता है। यीशु संदूक के पास खड़े थे और जब पवित्र जनों की प्रार्थनाएं उनके पास पहुंचती तो धूपदानी की धूप धुआं देने लगती और वे उस धूप के धुएं के साथ उनकी प्रार्थनाएं अपने पिता के सम्मुख चढ़ाते। संदूक में मन्ना का सोने का पात्र, हारून की वो छड़ी जो कोंपलित हो गई थी और पत्थर की पट्टिकाएं थीं जो पुस्तक की भांति एक साथ तय हो जाती थीं। यीशु ने उन्हें खोला और मैंने देखा कि उन पर परमेश्वर की उंगली से 10 आज्ञाएं लिखी हुई थीं। एक पट्टिका पर 4 थीं और दूसरी पर 6। पहली पट्टिका की 4 बाकी 6 से अधिक चमक रही थीं, परंतु चौथी सप्त की आज्ञा सबसे बढ़कर चमक रही थी, क्योंकि सप्त को परमेश्वर के पवित्र नाम के सम्मान में मानने के लिए अलग ठहराया गया था। पवित्र सप्त अत्यंत महिमामय दिख रहा था उसके चारों ओर महिमा का आभामंडल था। मैंने देखा कि सप्त की आज्ञा क्रूस पर कीलों से नहीं ठोकी गई थी। यदि वो ठोकी गई होती तो अन्य नौ आज्ञाएं भी ठोकी गई होती, और तब हमें चौथी को तोड़ने की भांति उन सबको तोड़ने की भी स्वतंत्रता तो होती। मैंने देखा कि परमेश्वर ने सप्त को नहीं बदला, क्योंकि वो कभी नहीं बदलता, परंतु पोप ने उसे सप्ताह के सातवें दिन से बदलकर पहले दिन कर दिया था, क्योंकि उसे समयों और व्यवस्थाओं को बदलना था। प्रारंभिक लेखन 32 दफनून, परंतु वर्तमान
1798 में जब प्रोटेस्टेंट अंधकार युग से बाहर निकले और दानियेल की पुस्तक की मुहर खोआ, तब बाइबिलीय भविष्यवाणी का छठा राज्य अर्थात प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय का दो सींगों वाला पृथ्वी का पशु भविष्य सूचक इतिहास में अपना कूच आरंभ कर चुका था। प्रोटेस्टेंट वाद उस पवित्र दस्तावेज पर स्थापित हुआ जिसे पवित्र बाइबल कहा जाता है, और गणतंत्रवाद उस पवित्र दस्तावेज पर स्थापित हुआ जिसे संविधान कहा जाता है। परमेश्वर अपनी मरुभूमि में रही कलीसिया को अंधकार युग से बाहर निकाल चुका था, परंतु मिस्री दासता के काल में प्राचीन इसराइल की तरह सब्त की आज्ञा भुला दी गई थी। जैसे इसराइल सिनाय पर व्यवस्था दिए जाने की ओर पाव कर गया, वैसे ही इसराइल आधुनिक इसराइल 22 अक्टूबर 1844 की ओर बढ़ते हुए अटलांटिक पार कर गया, जहां व्यवस्था फिर एक बार प्रकट की जाएगी। प्रभु फिर एक बार ऐसी प्रजा उठा रहा था जो उसकी व्यवस्था की अभिरक्षक, उसके भविष्य सूचक प्रकाशनों की अभिरक्षक बनेगी और प्रोटेस्टेंट वाद की बागडोर संभालेगी। प्राचीन इसराइल को उसकी व्यवस्था के अभिरक्षक होने के अपने कार्य के प्रतीक के रूप में 10 आज्ञाओं की दो पट्टिकाएं दी गईं, और आधुनिक इसराइल को उसके भविष्य सूचक वचन के अभिरक्षक होने के अपने कार्य के प्रतीक के रूप में हबक्कूक की दो पट्टिकाएं दी गईं। आधुनिक इसराइल को जब वो संसार के सामने तीसरे स्वर्गदूत का संदेश प्रस्तुत करता, दोनों जोड़ी पट्टिकाएं साथ ले चलना था। वो संदेश जिसे प्रोटेस्टेंट वाद का दायित्व उठाने वाले घोषित करते हैं। अंधकार युग से निकलकर आया प्रोटेस्टेंट वाद उस समय अधूरा था, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन इसराइल लाल समुद्र से होकर गुजरते समय अधूरा था। प्रोटेस्टेंट वाद ने बाइबल और केवल बाइबल का सूत्र वाक्य तो स्वीकार किया, परंतु रोमन कैथोलिकवाद की मूर्ति पूजक शिक्षाओं को सदियों तक खाते रहने के कारण मूर्तियों को बलि चढ़ाई हुई वस्तुएं परमेश्वर के वचन की उसकी समझ अधूरी थी। परमेश्वर की योजना ये थी कि सच्चा प्रोटेस्टेंट व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता द्वारा प्रतीकित अर्थात दो जोड़ी पट्टिकाओं द्वारा परमेश्वर के पूरे वचन का प्रतिनिधित्व करे, जो परमेश्वर की प्रजा के कार्य और परमेश्वर के स्वभाव दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। पहले स्वर्गदूत का कार्य ऐसे सच्चे प्रोटेस्टेंट लोगों को उत्पन्न करना था जो उसकी व्यवस्था और उसके भविष्यद्वाणी वचन दोनों के धारक और संरक्षक हों।
परमेश्वर ने आज के समय में, जैसे उसने प्राचीन इसराइल को बुलाया था, अपनी कलीसिया को पृथ्वी पर प्रकाश बनकर खड़े रहने के लिए बुलाया है। सत्य की शक्तिशाली कुल्हाड़ी पहले, दूसरे और तीसरे स्वर्गदूतों के संदेश के द्वारा उसने उन्हें कलीसियाओं और संसार से अलग कर लिया है, ताकि उन्हें अपने साथ एक पवित्र निकटता में लाए। उसने उन्हें अपनी व्यवस्था के भंडारी बनाया है और इस समय के लिए भविष्यवाणी के महान सत्यों को उन्हें सौंप दिया है। जैसे पवित्र वचन प्राचीन इसराइल को सौंपे गए थे, वैसे ही ये भी संसार तक पहुंचाए जाने के लिए एक पवित्र धरोहर हैं। प्रकाशित वाक्य 14 के 3 स्वर्गदूत उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो परमेश्वर के संदेशों के प्रकाश को स्वीकार करते हैं और उसके प्रतिनिधि बनकर पृथ्वी की लंबाई और चौड़ाई में चेतावनी सुनाने के लिए निकल पड़ते हैं। टेस्टिमोनीज खंड 5 चौसिल पंजाब पे।
दो तालिकाओं के दो सेट के अभिरक्षक के रूप में पहचाने गए लोगों द्वारा घोषित की जाने वाली चेतावनी कैथोलिकता का चिन्ह ग्रहण करने के विरुद्ध है। ये विरोध अहाब और ईजबेल के अवैध संबंध के विरुद्ध है, और इसका प्रतिनिधित्व इलिया ने करमेल पर्वत पर किया था। सिनै पर्वत पर पत्थर की दो पट्टिकाओं का दिया जाना 1842 से 1839 के इतिहास में हबक्कूक की कपड़े पर बनी दो तालिकाओं के दिए जाने का प्रतीक था। हबक्कूक की वे दो तालिकाएं परमेश्वर और उसके प्रोटेस्टेंट लोगों के बीच वाचा संबंध का प्रतीक है। उन तालिकाओं को अस्वीकार करना प्राचीन इसराइल द्वारा परमेश्वर की व्यवस्था को अस्वीकार करने के समान होगा। मिलरवादियों ने अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया और सप्त का प्रकाश ग्रहण किया, परंतु परीक्षण की प्रक्रिया अभी अधूरी थी। उसी समय गणतंत्रवाद का सींग भी उसी इतिहास से होकर आगे बढ़ रहा था और 1863 में अपनी संयुक्त यात्रा में दोनों सींग एक मील के पत्थर पर पहुंचने वाले थे। मिलर के एलिया संदेश ने प्रोटेस्टेंट सींग की स्थापना के उद्देश्य से एक क्रमिक शुद्धिकरण प्रक्रिया को जन्म दिया और उसी इतिहास में रिपब्लिकन सींग एक क्रमिक राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में शामिल था। दोनों सींग एक ही पृथ्वी के पशु पर हैं, इसलिए इन्हें पृथ्वी के पशु के पूरे इतिहास में एक साथ चलना होगा। पृथ्वी के पशु के गणतांत्रिक सींग की पहली भविष्य सूचक विशेषता 1779 में संविधान को प्रभावी करने के लिए बोलने की कार्रवाई थी। 1779 में अंत का समय, जब दानियल की पुस्तक की मुहर खोली गई, पृथ्वी का पशु बाइबल की भविष्यवाणी के छठे राज्य के रूप में पहली बार बोलेगा। 1779 बाइबिलीय भविष्यवाणी के छठे राज्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की शुरुआत थी और 1779 में पृथ्वी के पशु के इतिहास की शुरुआत में जो बोलना हुआ वो छठे राज्य के अंतिम बार बोलने का प्रतिरूप ठहरेगा और वो समय अजगर की आवाज के रूप में दर्शाया गया है। जब हम 1779 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गणतांत्रिक सींग द्वारा पारित किए गए कानूनों पर विचार करते हैं तो हमें उन कानूनों का एक प्रतिरूप देखने की अपेक्षा करनी चाहिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अजगर की तरह बोलने पर रविवार के कानून के साथ मिलकर पारित किए जाएंगे। जैसे ही हम निम्न चार कानूनों पर विचार करते हैं, स्वयं से पूछें कि क्या 1779 में पारित ये चार कानून अल्फा और ओमेगा की भविष्य सूचक छाप रखते हैं। 1798 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई महत्वपूर्ण कानून पारित किए जिन्हें विदेशी और राजद्रोह अधिनियम कहा जाता है। ये अधिनियम चार कानूनों की एक श्रृंखला थे जिन्हें फेडरलिस्ट नियंत्रित कांग्रेस ने पारित किया था और संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति तथा जॉर्ज वाशिंगटन के पूर्व उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स ने उन पर हस्ताक्षर कर उन्हें कानून बनाया। प्राकृतिकरण अधिनियम, इस कानून ने आप्रवासियों के लिए अमेरिकी नागरिक बनने हेतु निवास की अनिवार्य अवधि को 5 से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य हाल में आए आप्रवासियों के प्रभाव को सीमित करना था, जो अक्सर विपक्षी दल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन के साथ जुड़े होते थे। एलियन फ्रेंड्स अधिनियम, इस अधिनियम ने राष्ट्रपति को शांतिकाल के दौरान संयुक्त राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा समझे जाने वाले गैर नागरिकों को निर्वासित करने का अधिकार दिया। इसने राष्ट्रपति को किसी भी ऐसे गैर नागरिक को हिरासत में लेने और निर्वासित करने की अनुमति दी जिसे वो खतरनाक माने। विदेशी शत्रु अधिनियम, इस कानून में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ युद्धरत देशों के नागरिकों की गिरफ्तारी, नज़रबंदी और निर्वासन का प्रावधान किया गया था। इसे 1790 के दशक के उत्तरार्ध के तनावपूर्ण माहौल के दौरान एहतियात के तौर पर लागू किया गया था। राजद्रोह अधिनियम, ये विदेशी और राजद्रोह अधिनियमों में सबसे विवादास्पद है। इसने सरकार या उसके अधिकारियों के विरुद्ध झूठी, कलंकजनक और दुर्भावनापूर्ण लिखित सामग्री का प्रकाशन, उनकी मानहानि करने या उन्हें बदनाम करने की नीयत से एक आपराधिक कृत्य बना दिया। आलोचकों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला माना। विदेशी और राजद्रोह अधिनियमों को लेकर भारी विवाद हुआ और वे डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन की ओर से कड़े विरोध का कारण बने, क्योंकि उनका मानना था कि ये कानून मौलिक संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और उनके राजनीतिक दल को निशाना बनाते थे। उनका तर्क था कि ये कानून प्रथम संशोधन का उल्लंघन है जो अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अंततः इन कानूनों ने 1200 के चुनाव में भूमिका निभाई, जब थॉमस जेफरसन
और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ने राष्ट्रपति पद और कांग्रेस में जीत हासिल की, जिसके परिणाम स्वरूप राजद्रोह अधिनियम को निरस्त कर दिया गया।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी का मानना था कि इन कानूनों ने संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, और उनका ये भी विश्वास था कि ये कानून विरोधी राजनीतिक दल को निशाना बना रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कानून निरस्त कर दिए गए या बाद में समाप्त हो गए। अल्फा और ओमेगा शुरुआत के साथ अंत को दर्शाता है। उस इतिहास में जहां इन कानूनों को अधिनियमित किया गया या बोलकर कानून बना दिया गया, फेडरलिस्ट पार्टी का विरोध डेमोक्रेट रिपब्लिकन कहलाने वाली एक पार्टी कर रही थी। डेमोक्रेट रिपब्लिकन पार्टी का विकास अंततः रिपब्लिकन पार्टी को जन्म देता है, एक राजनीतिक पार्टी जो मुख्यतः दास्ता विरोधी रुख के आधार पर एकजुट हुई थी। इतिहासकार 1863 को गृह युद्ध का बिल्कुल मध्य बिंदु मानते हैं, वो युद्ध जिसका आधार दास्ता का मुद्दा था। 1863 प्रोटेस्टेंट सिंह के नए ध्वजवाहकों के लिए भी एक मील का पत्थर है, जिन्होंने तब स्वर्गदूतों द्वारा मिलर को दी गई पहली समय भविष्यवाणी लेवे व्यवस्था अध्याय 26 की 7 बार वाली भविष्यवाणी को अस्वीकार कर दिया। क्या ये मात्र संयोग हो सकता है कि 7 बार की ये भविष्यवाणी लेवे व्यवस्था के पिछले अध्याय में निर्धारित दास्ता के नियमों पर ही आधारित है? 7 बार द्वारा संकेतित शाप ये प्रतिज्ञा था कि यदि अध्याय 25 के वाचा के नियमों की अवज्ञा की जाए तो इज़राइल उस दास्ता में लौटकर अपना इतिहास समाप्त करेगा, जिससे उसे तब बाहर निकाला गया था जब उसने लाल सागर से अपनी यात्रा आरंभ की थी। 1798 से 1873 तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी नामक राजनीतिक दल कई दौर के शुद्धिकरण या उथल पुथल से गुजरा। 1798 से आगे और विशेषकर 11 अगस्त 840 के बाद से 1873 तक मिलेराइट आंदोलन कई दौर के शुद्धिकरण और उथल पुथल से गुजरा।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की शुरुआती राजनीतिक पार्टियों में से एक थी, आज मौजूद आधुनिक रिपब्लिकन पार्टी में सीधे तौर पर परिवर्तित नहीं पास्ट। इसके बजाय समय के साथ इसमें कई परिवर्तन और विभाजन हुए, जिनके परिणाम स्वरूप अंततः रिपब्लिकन पार्टी के अबर्नाइट से पहले कई अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी, जिसे अक्सर थॉमस जेफरसन और जेम्स मैडिसन से जोड़ा जाता है, 18वीं सदी के उत्तरोन्नाइट्स में फेडरलिस्ट पार्टी के प्रतिक्रिया में स्थापित की गई थी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन संविधान की सख्त व्याख्या, राज्यों के अधिकार और कृषि प्रधान हितों का समर्थन करते थे। हालांकि 18वीं के दशक तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी क्षेत्रीय और वैचारिक आधार पर टूटने लगी। मुख्य विभाजन गुड फीलिंग्स के युग 1817-1825 के दौरान हुआ, जब जेम्स मॉनरो के राष्ट्रपति पद के खिलाफ मजबूत विपक्ष का अभाव था। राजनीतिक शांति की इस अवधि ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी के पतन में योगदान दिया। अंततः पार्टी कई गुटों में बैठ गई और निम्नलिखित राजनीतिक समूहों में रूपांतरित हो गई।
डेमोक्रेटिक पार्टी एड एंड्रू जैक्सन के अनुयायी ने, जो 1809 में 7वें राष्ट्रपति बने, डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। जैक्सोनियन डेमोक्रेट्स एक मजबूत कार्यपालिका शाखा, पश्चिम की ओर विस्तार और श्वेत पुरुषों के लिए व्यापक मताधिकार का समर्थन करते थे।
राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी, ये पार्टी एंड्रू जैक्सन के राष्ट्रपति कार्यकाल के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में उभरी और बाद में अन्य जैक्सन विरोधी गुटों के साथ विलय होकर विग पार्टी बन गई। राष्ट्रीय रिपब्लिकन आमतौर पर मजबूत संघीय सरकार और आर्थिक विकास के अधिक समर्थक थे।
एंटी मैसोनिक पार्टी, ये एक अल्पकालिक राजनीतिक दल था जो 1820 के दशक में उभरा, मुख्यतः गोपनीय मैसोनिक भ्रातृ संघ के प्रभाव को लेकर उठी चिंताओं के जवाब में। इसने कुछ पूर्व डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन को अपने साथ शामिल कर लिया।
विग पार्टी, 1830 के दशक में गठित, विगों में पूर्व राष्ट्रीय रिपब्लिकन, एंटी मेसन और अन्य विपक्षी समूह शामिल थे। वे जैक्सनवादी नीतियों के विरोध, मजबूत संघीय सरकार के समर्थन और औद्योगिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से पहचाने जाते थे।
आधुनिक रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना 1850 के दशक में दास प्रथा को लेकर बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के प्रत्यक्ष जवाब के रूप में हुई।
इसने पूर्व विगों, दास प्रथा विरोधी डेमोक्रेट्स, फ्री सोयलर्स और उन अन्य लोगों को आकर्षित किया जो नए क्षेत्रों में दास प्रथा के विस्तार का विरोध करते थे। रिपब्लिकन पार्टी के पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जॉन सी फ्रीमॉन्ट ने 1856 के चुनाव में हिस्सा लिया और पार्टी के पहले सफल उम्मीदवार अब्राहम लिंकन 1860 में चुने गए। इस प्रकार रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन परंपरा से अलग रूप में उभरी और अमेरिकी राजनीतिक इतिहास में इसकी एक अलग विशिष्ट राह रही। 1879 तक रिपब्लिकन पार्टी ने अपना पहला राष्ट्रपति चुना। ये उन राजनीतिक दलों के गठबंधन पर आधारित थी जो दास्ता के विरोध में थे। 1830 में मुक्ति घोषणा ने दास्ता को बोलकर अस्तित्व से बाहर कर दिया। 1830 में रिपब्लिकन सिंह, जिसका प्रतिनिधित्व तब रिपब्लिकन पार्टी करती थी, ने दास्ता को बोलकर अस्तित्व से बाहर कर दिया, जबकि प्रोटेस्टेंट सिंह एक आंदोलन रहना बंद कर दिया और सातवें दिन का एडवेंटिस्ट चर्च बन गया। मिलराइटों का आंदोलन कानूनी और आधिकारिक रूप से मई 1830 में समाप्त हो गया और उसी वर्ष मूसा की शपथ, दास्ता की भविष्यवाणी को अस्वीकार कर दिया गया। जिसके कान हो वो सुन ले। इस बिंदु पर भविष्यद्वक्ता दानियेल द्वारा मूसा की शपथ कहे गए विषय का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करना सूचनाप्रद हो सकता है।
हाँ, समस्त इज़राइल ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है, हटकर चले हैं ताकि तेरी वाणी का पालन न करे। इसलिए वो शाप और वो शपथ जो परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी है, हम पर उंडेल दी गई है, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। दानियल 9:11।
विलियम मिलर, जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते समय गैब्रियल और अन्य स्वर्ग दूतों द्वारा मार्गदर्शित थे, सबसे पहले लेवीय व्यवस्था अध्याय 26 के 7 गुना की ओर निर्देशित हुए। मिलर की गवाही ये है कि बाइबल के अपने अध्ययन में उन्होंने शुरुआत उत्पत्ति की पुस्तक से की और इसलिए वे दानियल अध्याय 8 पद 14 के 2300 वर्षों तक पहुंचने से बहुत पहले ही लेवीय व्यवस्था पर आ गए थे। उन्होंने केवल बाइबल और क्रूडन की कॉन्कॉर्डेंस का उपयोग किया।
क्रूडन की कॉन्कॉर्डेंस में उन हिब्रू या यूनानी शब्दों के कोई संदर्भ नहीं है जिनका तत्पश्चात किंग जेम्स बाइबल की अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। मिलर किसी शब्द का धर्म ग्रंथ के किसी अंश की अपनी समझ का मार्गदर्शन करने के लिए जिस अंश का वे अध्ययन कर रहे थे उसके संदर्भ पर विचार करते थे। जब बात उनके साथ बार की समझ की आई तो ये देखना बहुत सरल है कि लैव्य व्यवस्था के अध्याय 26 के 7 बार का संदर्भ अध्याय 25 भूमि को विश्राम देने, जुबली और दासत्व के नियमों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। अध्याय 25 के नियम परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था का हिस्सा हैं, जो आज्ञा मानने पर आशीर्वाद और न मानने पर शाप लाते हैं। अध्याय 25 में 7 गुना का शाप 25-26 वर्षों के समतुल्य बताया गया है और इसे भूमि के विश्राम के नियमों तथा दासत्व के सिद्धांतों के स्पष्ट संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 26 में इस दंड को मेरी वाचा का विवाद कहा गया है।
तब मैं भी तुम्हारे विरोध में चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुना और दंड दूंगा, और मैं तुम पर तलवार लाऊंगा जो मेरी वाचा के विवाद का बदला लेगी, और जब तुम अपने नगरों के भीतर इकट्ठे होगे तब मैं तुम्हारे बीच महामारी भेजूंगा और तुम शत्रुओं के हाथ में सौंपे जाओगे। लैव्य व्यवस्था 26:24-25।
संदर्भ में वो वाचा याना जिसके विषय में परमेश्वर का विवाद है, वही वो वाचा है जिसका उल्लेख पूर्व में अध्याय 25 में किया गया है। 7 बार का दंड परमेश्वर की वाचा का विवाद कहलाता है और उससे जुड़ा शाप ये है कि इज़राइल अपने शत्रुओं के हाथ में सौंप दिए जाएंगे, और एक बार शत्रुओं की भूमि में पहुंचने पर, जैसा कि दानियल था, इज़राइली अपने शत्रुओं के दास बन जाएंगे।
जब मूसा ने लावय व्यवस्था अध्याय 26 लिखा तब प्राचीन इज़राइल को अभी अभी मिस्र की दास्ता से छुड़ाया गया था, और अध्याय 25 में वर्णित दास्ता से संबंधित सिद्धांत या तो आशीष या शाप लाएंगे। प्राचीन इज़राइल ने कभी योबेल के नियमों का पालन नहीं किया और अंततः उत्तरी और दक्षिणी दोनों राज्य 7 बार के लिए तितर बितर कर दिए गए उस बात की पूर्ति में जिसे दानियल ने मूसा का शाप कहा था।
परमेश्वर और इसराइल के बीच वाचा का संबंध जो मिस्र में उनकी दास्ता के समय आरंभ हुआ था अशूर और बाबुल की दास्ता पर समाप्त हुआ। उत्तरी राज्य के विरुद्ध 798 में समाप्त हुआ और दक्षिणी राज्य के विरुद्ध 844 में समाप्त हुआ। इन दोनों 7 समय अवधियों का प्रारंभ बिंदु यशाया अध्याय 7 में 65 वर्षों की उस भविष्यवाणी से चिह्नित है जिसे यशाया ने 744 ईसा पूर्व में यहूदा के राजा आहाज को घोषित किया था।
क्योंकि सीरिया का सिर दमिश्क है और दमिश्क का सिर रेसिन है, और 65 वर्षों के भीतर इफ्राइम ऐसा टूट जाएगा कि वो कोई जाति न रहेगा, और इफ्राइम का सिर सामरिया है और सामरिया का सिर रिमलया का पुत्र है। यदि तुम विश्वास नहीं करोगे तो निश्चय तुम स्थिर नहीं रहोगे। यशाया 7:8-9।
यशायाह ने ये निर्दिष्ट किया था कि 742 ईसा पूर्व में जब भविष्यवाणी प्रस्तुत की गई उस समय से 65 वर्षों के भीतर उत्तरी राज्य विखंडित हो जाएगा। 19 वर्ष बाद 733 ईसा पूर्व में इसराइल के उत्तरी राज्य को अशूर के राजा ने दास्ता में ले लिया और 46 वर्ष बाद 7 ईसा पूर्व में बाबलोन के राजा ने यहूदा के दक्षिणी राज्य को दास्ता में ले लिया। 65 वर्षों की ये भविष्यवाणी 6 ऐतिहासिक मील के पत्थर प्रस्तुत करती है। पहला है 742 ईसा पूर्व जब ये भविष्यवाणी प्रस्तुत की गई। 19 वर्ष बाद 733 ईसा पूर्व में अशूरियों ने उत्तरी राज्य को दास्ता में ले लिया। 46 वर्ष बाद 743 ईसा पूर्व में बाबिलोनियों ने दक्षिणी राज्य को दास्ता में ले लिया। पहले 2520 वर्ष जो 733 ईसा पूर्व में आरंभ हुए थे 69 अठांग में समाप्त हुए। इसके बाद 1844 में वे 2520 वर्ष जो 1777 ईसा पूर्व में आरंभ हुए थे पूर्ण हुए। 1845 से संपूर्ण भविष्य सूचक संरचना को पूरा करने के लिए यह भविष्यवाणी 19 वर्ष बढ़कर 1833 तक पहुंची, क्योंकि जब अल्फा और ओमेगा ने भविष्य सूचक संरचना की शुरुआत के लिए 19 वर्षों को चिन्हित किया था तो उसके अंत तक पहुंचने के लिए भी 19 वर्ष होने चाहिए। प्राचीन इसराइल को मिस्र की दास्ता से छुड़ाया गया, पर अवज्ञा के कारण उत्तर और दक्षिण दोनों राज्य फिर से दास्ता में चले गए। भविष्यवाणियां प्राचीन शाब्दिक इसराइल के भविष्यवाणी इतिहास से आगे बढ़कर आधुनिक आत्मिक इसराइल तक विस्तृत होती हैं, और इस प्रकार सभी भविष्य सूचक मील के पत्थरों का मुख्य विषय दास्ता है। यशाया अध्याय 7 की भविष्यवाणी दुष्ट राजा आहाज को 745 ईसा पूर्व में यशाया द्वारा प्रस्तुत की गई थी जब उत्तर और दक्षिण के बीच आसन गृह युद्ध के संकेत मिल रहे थे। आहाज का दक्षिणी राज्य प्राचीन इसराइल का वास्तविक महिमामय देश था। 1798 में बाइबल की भविष्यवाणी का आध्यात्मिक श्रुमियर्मा कहता है, बाइबल की भविष्यवाणी के 6 राज्य के रूप में शासन करने लगा जब 1844 में वास्तविक महिमामय देश के विरुद्ध 7 समय समाप्त हुए, तब राजा आहाज के इतिहास की तरह एक आसन गृह युद्ध था। 1844 तक राजनीतिक दलों के टूटने और गठबंधन बनने का घमासान लगभग पूरी तरह 2 प्रकार की राजनीतिक प्रवृत्तियों में सिमट गया था। दास प्रथा के संदर्भ में डेमोक्रेट दास प्रथा की समर्थक थे और रिपब्लिकन दास प्रथा विरोधी। 1798 से लेकर 1860 में गृह युद्ध की शुरुआत तक 2 वर्गों की राजनीतिक पार्टियों के विकसित होने की प्रक्रिया स्थापित हो चुकी थी। आहाज शाब्दिक महिमामयी भूमि का प्रतिनिधित्व करता था और इस प्रकार आध्यात्मिक महिमामयी भूमि का प्रतीक था। आहाज का इतिहास उस भविष्यवाणी संबंधी इतिहास का जुड़ा आयत जेकिया, जिसमें भविष्यवाणी 745 ईसा पहले में घोषित की गई थी, और इसलिए वो उस इतिहास का भी प्रतीक है जिसमें वो भविष्यवाणी समाप्त हुई। प्रारंभिक इतिहास में 10 गोत्रों से बना उत्तरी राज्य दक्षिण के 2 गोत्रों की दैवी रूप से स्थापित सरकार के विरोध में उन 2 गोत्रों से अलग हो गया था। 10 उत्तरी गोत्रों ने सीरिया के साथ एक संघ बनाया जो दक्षिणी संघ और सीरिया द्वारा प्रतीकात्मक रूप से प्रतिनिधित्व की गई एक शक्ति के बीच होने वाले गठबंधन का प्रतीक है।
ये संक्षिप्त सार बताता है कि लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 के 7 गुना एक वाचा का वचन है जो आज्ञा पालन पर आशीर्वाद और अवज्ञा पर दासता का शाप ठहराता है। उत्तरी और दक्षिणी राज्यों ने एक ही राष्ट्र के रूप में साथ में शुरुआत की जिसे दासता से छुड़ाया गया था, पर अपने अपने अंत में वे फिर से दासता में सौंप दिए गए। दासता से संबंधित उन भविष्यवाणियों के अंत के 65 वर्ष इस तरह पूरे हुए कि आध्यात्मिक इज़राइल आध्यात्मिक महिमामय भूमि में उत्तर और दक्षिण के बीच के एक गृहयुद्ध के बिल्कुल बीचों बीच था। उस गृहयुद्ध में विरोधी पक्ष एक ऐसा राज्य था जिसने एक परिसंघ बनाया और विरोधी राज्य में स्थित दैवीय रूप से स्थापित सरकार से अलग हो गया। सत्ता सौ नौरचीर से लेकर गृहयुद्ध तक गणतंत्रवाद की तुरही को एक ऐसी प्रक्रिया से गुजारा गया जिसने दास प्रथा के मुद्दों के दो पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक विरोधियों के दो वर्ग उत्पन्न किए। दास प्रथा समर्थक वे विरोधी जो दास प्रथा को जारी रखना चाहते थे लड़ाई हार गए। 70 साल से नहीं है, गृह युद्ध तक प्रोटेस्टेंटवाद के श्रृंख को एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ा जिसने धार्मिक विरोधियों के दो वर्ग उत्पन्न किए जो दासता के मुद्दों के दो पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे दासता समर्थक विरोधी जो दासता से संबंधित भविष्यवाणी की मूल व्याख्या को बनाए रखना चाहते थे इस संघर्ष में पराजित हो गए। 1863 में रिपब्लिकनवाद का बिगुल दास प्रथा को अस्वीकार करने में सफल रहा। 1763 में प्रोटेस्टेंटवाद का सींग गुलामी की भविष्यवाणी को अस्वीकार करने में सफल हुआ। ऐसा करते हुए उन्होंने मिलर के कार्य को, जो अपने समय के एलिया थे, अस्वीकार कर दिया। इसी तरह उन्होंने मूसा की शपथ, जो उनके समय की आधारशिला थी, को भी अस्वीकार कर दिया। तब मूसा और एलिया को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन वे 11 सितंबर 2001 को लौट आए। अल्फा और ओमेगा, वो अद्भुत भाषाविद जिन्होंने स्वयं को पलमुनि अद्भुत गणनाकार के रूप में घोषित किया, ने मूसा की शपथ से संबंधित समय भविष्यवाणी में सर्वत्र अपने दिव्य हस्ताक्षर दर्ज किए। यदि तुम विश्वास न करोगे तो निश्चय ही तुम स्थिर न रहोगे।